हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रीति बार बार आयुष्मान को कुछ इशारा करती रही, कभी उसे कोहनी मारती तो कभी उसके पैर को अपने पैर से छूती। आयुष्मान बार बार पलटकर उसे देखता और प्रीति उसे कुछ इशारा करती। आयुष्मान बार बार इशारों से उसे शांत रहने को कह रहा था। उनकी ये इशारों वाली बातें धीरज जी ने देख ली और आयुष्मान को देखकर बोले, दामाद जी, कोई परेशानी है? उनकी आवाज ने आयुष्मान के साथ साथ बाकी सबका ध्यान भी अपनी ओर खींचा। आयुष्मान ने उन्हें देखा और तुरंत ही इनकार में सर हिलाने को हुआ कि प्रीति ने फिर उसे कोहनी मार दी। आयुष्मान ने पलटकर उसे देखा तो उसने इशारे में कहने को कहा। सबकी निगाहें उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। अब की बार बुआ जी ने उन्हें देखते हुए सवाल किया, प्रीति बेटा, क्या बात है, कोई परेशानी है आपको? मौका प्रीति के हाथ आया तो उसने झट से लपक कर उस मौके को पकड़ लिया और उन्हें देखकर मुस्कुराकर बोली, नहीं बुआ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर इन्हें आप सबसे कुछ कहना है, लेकिन ये सकुचा रहे हैं। प्रीति की बात सुनकर आयुष्मान आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा, वहीं बाकी सब उसे देखने लगे। बुआ जी ने अब आयुष्मान से सवाल किया, दामाद जी, क्या बात है, जो कहना है बेझिझक कहिए, इसे अपना ही परिवार समझिए। बुआ जी की ये बात सुनकर माधुरी ने बुरा सा मुंह बना लिया। वहीं आयुष्मान ने अब निगाहें उनकी तरफ घुमाते हुए गंभीरता से कहा, वो एक्चुअली बुआ जी, मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ आना हो जाएगा, मैं बस एक दिन के लिए आया था और आज दोपहर तक मेरा ऑफिस पहुँचना जरूरी है, तो मुझे कुछ देर में निकलना होगा। उसने इतना ही कहा था कि प्रीति ने फिर उसे कोहनी मार दी। आयुष्मान ने चौंकते हुए उसे देखा। प्रीति उसे आंखें दिखाने लगी। आयुष्मान ने तुरंत ही अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मेरा मतलब था कि हमें कुछ देर में निकलना होगा ताकि दोपहर तक पहुंच जाएं। आयुष्मान की बात सुनकर लगभग सभी के चेहरे पर चिंता के बादल घिर आए। शकुंतला जी ने तुरंत ही परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, पर दामाद जी, इतनी जल्दी, कल ही तो रात में आप दोनों आए हैं और अभी वापस जाना? जाना जरूरी है मम्मी जी, इसलिए मुझे जाना ही होगा, पर कभी और आऊंगा तो जरूर ठहरूंगा, आयुष्मान ने बात पर जरा जोर देते हुए कहा। उसके बाद सुनकर बुआ ने प्रीति को देखकर कहा, अगर आपका जाना जरूरी है तो हम आपको रोकेंगे नहीं, पर प्रीति को अभी आप यहीं छोड़ जाइए, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी, फिर आकर ले जाइएगा उन्हें, या राजेश छोड़ आएगा उन्हें आपके पास। बुआ जी के बात सुनकर प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं बुआ जी, मैं यहाँ इनके बिना नहीं रह सकती, वहाँ बस हम दोनों ही रहते हैं, अगर मैं नहीं गई तो ये अकेले रह जाएंगे, कोई नहीं होगा उनका ख्याल रखने वाला, और ये बड़े लापरवाह है, इसलिए मेरा साथ जाना जरूरी है ना? प्रीति ने आयुष्मान की बांह पर हल्के से चिंटी काटते हुए आंखों से ही कुछ इशारा किया तो आयुष्मान ने तुरंत ही हामी भर दी, पर ये सब किसी से छुपा नहीं था। राजेश ने प्रीति को देखा और मायूसी से बोला, प्रीति, तू जाना चाहती है यहाँ से? प्रीति के साथ साथ आयुष्मान भी उसे देखने लगा। प्रीति ने एक नज़र आयुष्मान को देखा जो राजेश को देखकर मुस्कुराकर बोली, भाई, अब ये घर वो घर नहीं रहा जिसमें मैंने जन्म लिया था, इतनी बड़ी हुई थी, जहाँ मुझे सबका प्यार मिलता था, तब मैं इस घर की बेटी हुआ करती थी, इसलिए खूब प्यार लुटाया जाता था मुझ पर, या शायद वो प्यार भी मेरी कल्पना ही थी, जो भी था, पर अब वो दौर गुजर गया है। अब मैं आयुष्मान जी की पत्नी हूँ और मेरा पहला फ़र्ज़ उनके बारे में सोचना है, अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो वहाँ वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और मेरे रहते उन्हें अकेलापन सहना पड़े तो मेरे होने का मतलब ही क्या होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। वैसे भी आप सबसे मिल लिया, आपने देख लिया कि अपनी जिंदगी में मैं खुश हूँ, इतना काफी है, मैं इनके साथ वापस जाना चाहती हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो जाऊँगी दोबारा, अभी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। कहीं ना कहीं सभी प्रीति के अचानक जाने के फैसले के पीछे की वजह को समझ रहे थे, पर वे शांत ही रहे। धीरज जी ने आयुष्मान को देखते हुए कहा, अगर आपका जाना जरूरी है तो हम रोकेंगे नहीं आपको, और प्रीति पर अब आपका हमसे ज्यादा अधिकार है तो उसे भी साथ लेकर जा सकते हैं। आयुष्मान ने सर हिला दिया। कुछ देर में खाना खत्म हुआ। शकुंतला जी ने दोनों को पहनने को कपड़े दिए, फिर वे सबसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल गए। करीब 12 बजे वे अपने अपार्टमेंट पहुँचे। दोनों ने फ्रेश होकर अपने कपड़े बदले, फिर प्रीति किचन में चली गई और आयुष्मान अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ गया। कुछ घंटे बाद प्रीति हाथ में दो प्लेट लिए वहाँ आई और प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, बाद में काम कर लीजिएगा, पहले खाना खा लीजिए। आयुष्मान, जिसकी निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, उसने तुरंत सर घुमाकर देखा, फिर सर हिला दिया। प्रीति पानी भी ले आई। तब तक मैं आयुष्मान लैपटॉप बंद करके रख चुका था। दोनों ने साथ बैठकर खाना शुरू किया और इस दौरान उनके बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। प्रीति, अब तुम खुश हो? कुछ पल की खामोशी के बाद आयुष्मान ने प्रीति से पूछा। उसका सवाल सुनकर प्रीति ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। एक बार फिर उनके बीच गहरी खामोशी छा गई। लंच के बाद प्रीति किचन का काम करके आराम करने चली गई। शाम को दोनों पार्क गए और रात को खाना खाकर सो गए। जाने क्या चल रहा था उनके मन में कि आज दोनों ने ही ज्यादा बातें नहीं की। आयुष्मान का तो नेचर ही ऐसा था कि वो कम ही बोलता था, पर आज प्रीति भी कुछ शांत शांत नजर आई।